नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। अलास्का में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी बैठक के बारे में जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप आज रात वॉशिंगटन में यूरोपीय नेताओं के एक समूह के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता की और भारत के कपिल बैंसला ने कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज फोन पर बातचीत हुई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हाल के मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान करता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस दिशा में किए जाने वाले सभी प्रयासों का समर्थन करता है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें आशा है कि आने वाले दिनों में भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बातचीत होती रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अगर चाहें तो रूस के साथ युद्ध समाप्त कर सकते हैं। आज रात ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात से पहले उनका ये बयान आया है। एक रिपोर्ट।
श्री ट्रंप ने 2014 में ओबामा प्रशासन के दौरान क्रीमिया पर रूस के कब्जे का भी हवाला दिया और यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल करने की संभावना से इनकार किया। श्री ज़ेलेंस्की का आज रात शीर्ष यूरोपीय नेताओं के एक समूह के साथ व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करने का कार्यक्रम निर्धारित है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस को उसके युद्ध के लिए पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने आज रूस से उस युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया जो उसने शुरू किया था। ज़ेलेंस्की ने आशा व्यक्त की कि अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के साथ एक संयुक्त मोर्चा मॉस्को को शांति समझौता के लिए प्रेरित करेगा। ज़ेलेंस्की का बयान ऐसे समय में आया है जब वे शीर्ष यूरोपीय नेताओं के समर्थन से व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए वॉशिंगटन पहुंचे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने इस युद्ध को शीघ्र समाप्त करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी।
नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक प्राथमिकता वाला साझेदार है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर नेपाल की आधिकारिक यात्रा की। कल सुबह काठमांडू पहुंचे श्री मिश्री ने अपनी यात्रा के दौरान कई उच्च स्तरीय बैठकें की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर नेपाल की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा की। यात्रा के दौरान विक्रम मिश्री ने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विदेश मंत्री आरजू राणा द्योबा के साथ शिष्टाचार भेंट की। उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधियों से मिलकर भारतीय विदेश सचिव ने दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी साझा की। भारत और नेपाल के दोनों विदेश सचिवों ने व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की आगामी भारत यात्रा के एजेंडा के लिए संभावित सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा हुई। विदेश सचिव मिश्री ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्डेल से भी मुलाकात की और नेपाली सेना को लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स, महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण और सैन्य पशुओं समेत रक्षा भंडार और उपकरण सौंपे। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हुई। इस दौरान अपने प्रारंभिक भाषण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों में कठिन दौर देखने के बाद अब आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को तीन परस्पर मूल्यों, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतभेद को विवाद या प्रतिस्पर्धा में नहीं बदलना चाहिए।
Having seen a difficult period in our relationship, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict.
चीन के विदेश मंत्री कल विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने भारत और पाकिस्तान में हाल ही में आई अचानक बाढ़ से जानहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री गुतेरेश ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस आपदा से पीड़ित सभी लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। महासचिव के प्रवक्ता द्वारा कल जारी एक बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की टीमें आवश्यक सहायता प्रदान करके लिए सरकारों के साथ हैं। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने कल देश भर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। देश के उत्तरी हिस्सों में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 327 हो गई है। 26 जून से शुरू हुई मानसूनी बारिश ने देश में तबाही मचा दी है और तब से अब तक लगभग 650 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक देश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा का केंद्र दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने AI से संचालित यात्री कॉरिडोर की शुरुआत की है। इससे यात्रियों को बिना कोई दस्तावेज दिखाए कुछ ही सेकंड में इमिग्रेशन क्लियर करने में सुविधा मिलेगी। एक रिपोर्ट।
ये ट्रेवल विदाउट बॉर्डर्स पहल का एक हिस्सा है। ये प्रणाली स्मार्ट यात्रा तकनीक में एक बड़ी छलांग है जो गति, सुरक्षा और सुविधा के बीच संयोजन करती है। दुबई में निवास और विदेशी मामलों के महानिदेशालय के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद अलमर्री ने बताया कि ये कॉरिडोर एक निर्धारित रास्ते पर चलकर एक साथ 10 यात्रियों के लिए सक्षम है। चेहरे की पहचान और पूर्व पंजीकृत बायोमेट्रिक डेटा 14 सेकंड में पहचान की पुष्टि कर देता है, जिससे पासपोर्ट काउंटर, स्मार्ट गेट या शारीरिक जांच की आवश्यकता खत्म हो जाती है। अनलिमिटेड स्मार्ट ट्रेवल पहल के नाम से जानी जाने वाली इस परियोजना का उद्देश्य पारंपरिक पासपोर्ट नियंत्रण को पूरी तरह से समाप्त करना है। विश्व दर्पण के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
दुबई में वन फ्री जोन पासपोर्ट नामक एक एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य कंपनियों को एक ही लाइसेंस के अंतर्गत अमारात के सभी फ्री जोन क्षेत्र में काम करने की अनुमति देना है। दुबई फ्री जोन काउंसिल द्वारा घोषित यह पहल कई परमिटों की आवश्यकता को समाप्त करने के साथ ही लागत को कम भी करती है, निवेशकों तथा उद्यमियों के लिए संचालन को सरल बनाती है। श्रीलंका में ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के त्रिंकोमाली परिसर में आज 6 दिन के फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव में शनिवार तक विभिन्न भाषाओं में 6 भारतीय फिल्में दिखाई जाएंगी। पूर्वी प्रांत के राज्यपाल प्रोफेसर जयंत लाल रत्नशेखर ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महोत्सव का उद्देश्य सिनेमा के माध्यम से भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। सुपरमैन की शुरुआती फिल्मों में जनरल जॉर्ड सहित कई खलनायकों की जटिल भूमिकाएं निभाने वाले ब्रिटेन के अभिनेता टेरेंस स्टैम्प का कल निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। ऑस्कर के लिए नामित इस अभिनेता ने 6 दशक के अपने करियर में द एडवेंचर्स ऑफ प्रेसिला, क्वीन ऑफ द डेजर्ट फॉर फॉर्म द मेडिंग ग्राउंड और वाल्किरी जैसे फिल्मों में अभिनय किया। भारत ने कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। इस स्पर्धा में भारत के जोनाथन एंथनी ने कांस्य पदक जीता। उधर सीनियर वर्ग में भारतीय पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। अनमोल, आदित्य मालरा और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सौरभ चौधरी की भारतीय टीम 1735 अंक के साथ दूसरे नंबर पर रही। चीन की टीम ने इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। भारत के अनमोल जैन व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने से चूक गए, वे छठे स्थान पर रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। अलास्का में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी बैठक के बारे में जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आज रात वाशिंगटन में यूरोपीय नेताओं के एक समूह के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। और भारत ने कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।